अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सब्वसाहूणं। पिछली बार दोनों प्रकार की मृत्यु में जो फर्क है उसके बारे में चर्चा की थी। एक है आत्महत्या और एक संलेखना, दोनों में क्या फर्क है। तो एक दृष्टांत दिया था, सागर यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी जहाँ पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट एमएससी में, उसमें एक उदाहरण आता है, दो लोगों ने गोली चलाई, दो लोगों को लगी, एक जैसी चोट आई, पर जब सजा हुई तो अलग अलग। यानी एक ने फायरिंग की प्रैक्टिस करते समय, गोली दागने का अभ्यास करते समय गोली चलाई और भूल से वो किसी व्यक्ति को लग गई, और दूसरे ने निशाना साध कर गोली चलाई, यदि वो निशाना सही लगता तो बचता नहीं, लेकिन निशाना थोड़ा सा चूक जाने के कारण बच गया। तो फिर दोनों को सजाएं अलग अलग मिलती है, एक को कुछ मुआवजा देना पड़ता है कि भाई उसको जो मेडिकल खर्च आएगा उसको तुम्हें उठाना पड़ेगा, और कुछ फाइन दे करके उसको छुटकारा मिल जाता है। और आगे सावधानी रखना, गोली चलाते समय देख लिया करो। फिर दूसरे के ऊपर 302 धारा का मुकदमा चलता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो जब घटना बाहर बिल्कुल एक जैसी है तो फिर ये जजमेंट में, न्याय में अंतर क्यों? तो उसका समाधान ये निकला कि इरादे अलग अलग हैं। इरादे अलग होने के कारण घटना एक होते हुए भी दंड एक नहीं होता, एक को अटेम्प्ट टू मर्डर और एक को असावधानी। बस इसी प्रकार मृत्यु मृत्यु में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। एक मृत्यु वो है जो सहज रूप से कोई अपनी आयु पूर्ण करके मरता है, और एक मृत्यु वो है जो असहज रूप से आयु को नष्ट करके मरता है। तो संलेखना और आत्महत्या में जो फर्क है, वहां अपने को दोनों के इरादों पर ध्यान देने से बात समझ में आ सकती है। आत्महत्या करने वाले का इरादा यह है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो जीवन से इतना परेशान है कि उसको सहन नहीं हो रहा है, और सहन नहीं हो रहा है तो उसको एक मार्ग दिख रहा है, अंत। जीवन का अंत कर दो तो ये जो कुछ भी हो रहा है, बेचैनी जिस कारण से भी हो रही है, वो सब यहीं समाप्त हो जाएगी। तो ये उनका इरादा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आत्महत्या करने वाला अपना नाश चाहता है, और संलेखना वाला मरने के लिए संलेखना नहीं ले रहा है, किंतु मरण को निकट जानकर साधना कर रहा है। मरण को नहीं साध रहा है, मरण को निकट जानकर धर्म ध्यान कषाय विजय आदि की साधना कर रहा है। तो दोनों में अंतर हो गया, अभिप्राय बिल्कुल भिन्न भिन्न है। एक मरने के लिए कर रहा है और दूसरा मरण आने पर कर रहा है, दोनों में अंतर हो गया। आत्महत्या करने वाला जीवन से भाग रहा है, ठीक है, और भागता कौन है? वीर भागता है या कायर? कायर। तो आत्महत्या कायरता है, क्योंकि उसको वो सहन नहीं हो रही परिस्थिति, तो उसको एक ही रास्ता दिख रहा है, सामना नहीं कर सकता तो चलो भाग जाओ, और भागने का जो रास्ता है वो मौत है उसकी दृष्टि में, इसलिए मर रहा है वो। और संलेखना धारण करने वाला मृत्यु से भाग नहीं रहा है, लेकिन मृत्यु का सामना कर रहा है। सामना यानी ये मृत्यु आ रही है, उसके एक एक क्षण को जागृत होकर क्या मृत्यु की जो जीवन की अंतिम घड़ियां होती है, मृत्यु तो एक समय में हो जाती है, लेकिन उन घड़ियों को पूरी जागरूकता के साथ पूरे होश में वो देख रहा है। और उस समय उसके हृदय का भाव ये है कि देखता हूं ये मृत्यु मुझे कैसे परास्त करती है। कितना फर्क है, ये कहलाता है वीर। और वो जीवन नष्ट करने चला है, मुसीबतों से भाग रहा है, अब उसको कुछ भी सहन नहीं हो पा रहा है, मर करके वो सबको समाप्त करना चाहता है, अपनी जितनी मुसीबतें उनको वो कायरता है। दोनों में कितना अंतर हो गया। और इसी प्रकार देखो, संलेखना की बाह्य प्रक्रिया को देखने पर कई लोगों के मन में शंका होती है कि देखो इसने खाना कम कर दिया, अब ये क्या तरीका है, अब देखो ये उपवास भी कर रहा है, शरीर कितना दुबला हो गया, वेट लॉस कितना हो गया, वजन कितना घट गया, ये क्या तरीका है, अगर मृत्यु आ रही है तो आने दो ना। लेकिन ये सब बात ऐसे, इससे लगता है कि ये इच्छा मरण है, मृत्यु आ नहीं रही है, किंतु वो आहार पानी धीरे धीरे छोड़ छोड़ करके मृत्यु को निमंत्रित कर रहा है, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है। और वास्तव में गहराई में जाकर देखो तो कभी कभी कुछ चीजें ऊपर से एक जैसी लगती है, जैसे दो लोग बैठ करके पूजा कर रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं दोनों, क्योंकि पूरी विधियां एक जैसी है, लेकिन अगर इंटेंशंस देखो, दोनों के विचार देखो, तो फिर दोनों में अंतर मिलेगा। एक भक्ति भाव से पूजा कर रहा होगा और एक किसी स्वार्थवश कि भाई अब कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा है, चलो ये ट्राई करके देखते हैं, वो पूजा को ट्राई कर रहा है। और वो दूसरा अपने आप को रोक नहीं सकता, जिसके हृदय में भक्ति है वो अपने आप को पूजा करने से रोक नहीं सकता। और ये ऐसी मजबूरी आ गई है कि अब पूजा के सिवाय कोई चारा नहीं है। कितना अंतर है दोनों में, तो दोनों के फल एक होंगे क्या? नहीं हो सकते। भक्ति का फल अलग होता है, स्वार्थ का अलग होता है। तो यहां पर आत्महत्या और संलेखना में भी ऐसे बहुत सारे अंतर हैं। वास्तव में पिछली बार हमने ये बात बताई थी कि एक जीवन से हार कर मर जाता है, अपघात कर लेता है, और एक वो है जो जानता है कि मर सकता हूं लेकिन बहादुरी के साथ युद्ध के मैदान में लड़ने चला जाता है, उसके मरण को आत्महत्या नहीं कहते। युद्ध में मरने वाले को क्या कहते हैं? शहीद बोलते हैं। तो उसके मरण को शहीद मरण कहते हैं, वीर मरण कहते हैं। क्यों? अरे भाई, जब मालूम है कि युद्ध के मैदान में मौत हो सकती है तो गए क्यों? और अगर तुम अपनी इच्छा से गए हो युद्ध लड़ने, तो वो इच्छा मरण हो गया, और इच्छा मरण इज इक्वल टू सुइसाइड। इच्छा मरण करो तो उसी का नाम तो आत्महत्या है। लेकिन नहीं, उसके भीतर इरादा क्या है? देश की रक्षा का जज्बा, इमोशन, उसकी भावना उसके हृदय में होती है, इसलिए रक्षा की भावना से प्राण देना अपघात नहीं है, आत्महत्या नहीं है। अब उदाहरण आपने वो सुना होगा कि किसी ब्राह्मणी के घर बच्चे नहीं थे, और कहीं से नेवले का बच्चा मिल गया उसको, मंगूज का, उसने पाल लिया और बाद में उसको पुत्र हुआ, तो वो दोनों से बराबर प्रेम था उसका। एक बार वो पानी भरने गई और फिर नेवला वहां खेल रहा था उस कमरे में, बच्चा झूले में झूल रहा था पालने में, और तभी खिड़की के भीतर एक सर्प आ गया। सर्प आ गया, अब नेवला उस सर्प से भिड़ गया और फिर उस बच्चे की जान बचा ली नेवले ने। अपने आप को खतरे में डालकर उस नेवले ने सांप से युद्ध किया, सांप को परास्त कर दिया, बच्चे की जान बचा ली। फिर बाद जो घटना हुई बाद में, वो तो एक दुर्घटना हो गई कि उसने उतावली में ऐसा विपरीत निर्णय लेकर नेवले के मुंह में खून लगा हुआ देखकर उसको गलत धारणा बना ली और फिर आगे दुर्घटना हो गई। पर जब वो नेवला सर्प से लड़ने गया, अथवा भक्तामर स्तोत्र के पांचवें काव्य में सोहन तथा पितव भक्ति वशान मुनीश कर्तन स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किन निज शिशोः परिपालनार्थम। वो हिरणी जब शेर के सामने आ जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, अगर शेर उस हिरणी को मार डाले, वो तो मार ही डालेगा, तो हिरणी ने आत्महत्या की क्या? ये प्रश्न इंटेंशन समझाने के लिए मैं ऐसे दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इरादा, तो जान देने पर भी हर मरण को आत्महत्या की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, यह चर्चा है। हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए अगर शेर के सामने चली जाती और शेर उसको मार डाले, तो उस मरण को हिरणी की आत्महत्या नहीं कह सकते, बल्कि रक्षा में उसने प्राण दे दिए। इसी प्रकार जब युद्ध के मैदान में कोई शहीद होता है, तो उस शहीद के मरण को भी वीर मरण माना जाता है, आत्महत्या नहीं कहते। ठीक, ये तो हो गया दृष्टांत। अब दार्ष्टांत में क्या लगाना? कि जो कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, विकारों को जीतने के लिए संलेखना की एक विधि को अंगीकार कर रहा है, उस विधि में मृत्यु को आकर्षित नहीं किया जाता, किंतु मृत्यु निकट आने पर एक साधना अपनाई जाती है। उस साधना में शरीर दुबला हो जाए तो हो जाए, लेकिन शरीर को मरने के लिए दुबला नहीं किया जा रहा है। तो उस प्रक्रिया को आत्महत्या की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहां भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। आत्महत्या बेचैनी के साथ ही संभव है और संलेखना शांति के साथ ही संभव है। अंतर है दोनों में। फिर संलेखना के लिए बहुत सावधानी पूर्वक, कभी कभी बरसों तक भावना भानी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है। और आत्महत्या के लिए 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, अगर लग गया तो फिर आत्महत्या नहीं हो सकती। क्या मान लो किसी ने छलांग मारी पानी में और बचा लिया किसी ने, अब बोले क्या कर रहा था? वो परेशान हो गया था जीवन से। अच्छा, क्या परेशानी है? तो फिर वो अपनी कोई ऐसी परिस्थिति बता दे कि वो सामने वाले को भी दया आ जाए कि भाई ऐसी परिस्थिति में तो मैं भी मर जाता। बोलता है कि ठीक है चल तू लगा दे फिर से। बोले कि अब क्या लगाए? बोले अब तो तुमने तो मेरा प्रोग्राम फेल करा दिया, मैं कूद गया लेकिन तुमने निकाल लिया, अब दोबारा कैसे कूदूं? बोले क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कूदने का जो समय था वो 5 मिनट का, उसके बाद 6ठे मिनट में वो आवेश समाप्त हो जाता है। आवेश यानी वो जिसको आवेग बोल सकते हैं आप, कि एक तीव्रता होती है भावनाओं में, वो तीव्रता ठंडी पड़ जाती है और उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है, फिर नहीं कर सकता वो। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्महत्या तीव्र आवेश में ही की जा सकती है। और संलेखना संलेखना हर प्रकार के आवेश को दूर हटाकर ही होती है, आवेश में संलेखना हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे अंतर है। और संलेखना में मरण काल में हर कोई चाहता है कि शांतिपूर्वक मरण हो, अंत में अशांति न हो, बेचैनी न हो। तो बस वही तो प्रक्रिया है। सिर्फ इतना है कि जैसे खाने पीने का जहां तक सवाल है, तो मन की निर्मलता पर भोजन का बड़ा असर है। जितना उच्च कोटि की साधना करने वाला मनुष्य है, जितना अधिक भोजन संयम रखने वाला है, तो उसका मन उतना ही अधिक वश में होता है। रसना इंद्रिय को जिसने जीता, बाकी इंद्रियां और उसका मन भी उसके काबू में आ जाता है। यानी इसका उदाहरण एक दिया था हमारे गुरु महाराज ने कि मुंह में शक्कर से भरी हुई चम्मच रख दो, लेकिन वो 5 मिनट बाद सूखी निकले। शक्कर से भरी हुई ऐसे चम्मच रख दी, शक्कर को मुंह के अंदर नहीं लिया लेकिन ऐसे रख दी मुंह में, और 5 मिनट बाद उसको निकालो, सूखी की सूखी निकले। बेहोशी की दवा लेकर नहीं, जागृत अवस्था में, पूरे होश में इंद्रिय विजय बड़ी चीज होती है। और इसी प्रकार मिठाई खाते समय चेहरे का भाव और करेले का रस पीते समय चेहरे का भाव एक जैसा है। रहता तो साधना इसका नाम है कि बाह्य चीज का अंदर असर न हो। परिस्थिति मनस्थिति न बने, इसी का नाम साधना है। तो वो साधना उस समय अपनाई जाती है कि जिसके कारण, और दूसरी बात यह है कि शरीर को साधने के लिए कुछ ये उपवास, ऊनोदर, एकाशन और सारी साधनाएं अपेक्षित होती है, और उससे बहुत सारे विषैले तत्व शरीर से बाहर निष्कासित होते हैं। कभी क्या होता है कि उपवास चिकित्सा में बताया जाता है कि कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही, बहुत कोशिश कर रहे हैं, कई दवाइयां ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो उससे बोलते हैं कि चलो अब फिर तुम उपवास करो। लिंडा गुडमैन ने लिखा है कि हर आदमी को महीने में 3 दिन सिर्फ फलों के रस लेना चाहिए। महीने में 3 दिन वो अनार का रस हो, गन्ने का रस हो, कोई भी ऐसा, सिर्फ रसों में 3 दिन निकालना चाहिए उसको, लगातार 3 दिन। है ऐसा नहीं कि मतलब अभी निकाला एक, आज 2 तारीख को, फिर 15 तारीख को एक कर लिया और उसके बाद 31 अक्टूबर को फिर कर लिया। नहीं, लगातार 3 दिन अगर वो ऐसा करता है तो शरीर का शुद्धिकरण होता है। कई ऐसे विषैले तत्व हैं जो सामान्यतः नहीं निकल सकते, और दवाई लो तो उसके साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स, कई प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं, असर होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया, इससे क्या होता है कि बहुत सारे दोष वैसे ही निकल जाते हैं। जैसे कभी हमारे गुरुजी बहुत अच्छी संलेखना कराते हैं, उनके पास अगर कोई पित्त प्रकृति वाले साधु आते हैं संलेखना के लिए, तो फिर आचार्य श्री कहते हैं कि पित्त प्रकृति है तो फिर ये उल्टी जैसा बार बार होता है, लेकिन यदि कुछ निश्चित अंतराल पर उपवास करें तो उपवास से पित्त प्रकृति को काबू में किया जा सकता है, और यदि बहुत उग्र है तो ऐसी स्थिति में फिर उसके दूसरे विकल्प हैं, जैसे धवला की 13वीं पुस्तक में आया है कि ऐसी तीव्र प्रकृति हो तो फिर उनोदर करना, उपवास नहीं करना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास ना करके उनोदर कर लेना, ऐसा उल्लेख आया उसमें धवला में। तो ये भी एक बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि शरीर पर है और आत्मा अलग है तो अपन कुछ भी कर लो उठपटांग, उसकी विधि होती है, उस विधि से चलो तो फिर आगे साधना होती है। और जिसने शरीर को विष मुक्त कर लिया, शरीर के टॉक्सिन्स को जिसने निकाल दिया, इन साधनाओं के द्वारा, काय संलेखना के द्वारा क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, एक बार नैनागिर की बात है, एक ऐसे क्षपक आए थे साधना संलेखना के लिए कि उनको कैंसर था, और कैंसर यहाँ पर था पैरों में, जांघों में, तो वो ऐसे घाव थे बड़े बड़े, ऐसे गांठ जैसे, फोड़े जैसे थे उनके, और दवाइयाँ चलती थी उनको। तो संलेखना के दिन आचार्य श्री ने उनको, जब वो संकल्प ले रहे थे, संस्त्रारोहण बोलते हैं उसको, जब वो विधि स्वीकार कर रहे थे और आचार्य श्री को निर्यापक आचार्य माना उन्होंने, तब आचार्य श्री ने बोला कि आज से दवाई का त्याग रहेगा। उनके जितने संबंधी थे वो घबरा गए कि ये कैसे महाराज बताइए, अब ऐसे ही करते हैं महाराज लोग, तो कुछ भी त्याग करा देंगे या कोई भी नियम पकड़ा देंगे, भले वो सामने वाले की क्षमता हो या ना हो। लेकिन ऐसा था नहीं वास्तव में। वास्तव में आचार्य श्री ने कुछ सोच समझ करके ऐसा नियम दिया था, तो वो अभी समझ में नहीं आ रहा था किसी को, लेकिन जब औषध बंद करवा दिया आचार्य श्री ने, और फिर अपने निर्देशन के अनुसार उन्होंने पथ्य प्रारंभ कराया कि अब आपको अपनी आहारचर्या में अमुक अमुक प्रकार से आहार लेना है, और फिर इस क्रम से लेना है, और उपवास कब करना, उनोदर कब करना, ये सारा क्रम उन्होंने बतला दिया, और चर्या कैसी रहेगी ये भी बतला दिया। तो उसके बाद सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए जब वो कैंसर के फोड़े सूख गए, वो जो घाव थे वो पूरे एकदम ड्राई हो गए। तब पता चला कि देखो, संलेखना की विधि से कई ऐसे तत्व शरीर से निकल जाते हैं जिनके कारण बीमारियां टिकी हुई है। तो शरीर के ऐसे रोगों की जड़ काय संलेखना से ध्वस्त हो जाती है, और शरीर में सिर्फ जहर निकल जाते हैं, और जहर निकल जाने के बाद मन में जो सुकून होता है वो सिर्फ वही जानता है जिसका जहर निकला है। और इसका बड़ा गहन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जितनी दवाइयां खाने वाले लोग हैं और जितने जहरीले लोग हैं, माने शरीर की अपेक्षा से कई प्रकार के जहर भरे हुए हैं, कभी मूड हुआ तो फिर कोई क्रीम लगा ली, कभी कोई दूसरी क्रीम लगा ली, कभी कोई और दवाई खा ली, कभी और कोई चीज खा ली, कभी प्रदूषण में रहने के कारण भी श्वास के माध्यम से त्वचा के ऊपर बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो जहरीले होते हैं, कभी दर्द हो गया तो फिर कोई और पेन रिमूवर ऑइंटमेंट लगा ली, या फिर पेन किलर ब्रूफेन वगैरह कोई गोली खा ली, तो ये सारे जहर भर जाते हैं शरीर में। एक किताब हमारे पास अभी रखी हुई है, स्पिरिचुअल हीलिंग, उसमें माइकल ब्रैडफोर्ड नाम के लेखक ने लिखा है कि एक ऑइंटमेंट लगाने के बाद 20 साल तक के उसके केमिकल्स अपनी त्वचा में फंसे रहते हैं, 20 साल। अब सोचो आप, तो उस समय जब क्षपक अवस्था में, अब अच्छा लगता है लगाने में, अब साबुन कितने प्रकार के यूज करते हैं लोग, अब साबुन में कौन से केमिकल्स है किसको पता है, और कितने साबुन सिंथेटिक है और कितने साबुन ऑर्गेनिक है, कितनी सारी चीजें रहती उसमें। अब टैलो से बनने वाले कितने सारे साबुन है, मछली की चर्बी से। अब आप यहां पर ऐसे सिर हिलाएंगे जैसे कि बड़े शरीफ दूध के धुले लोग, और वहां जब प्रयोग की बात आएगी तो फिर सारे सब कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ज्यादा सीधा मत बनो आप, देवशास्त्र गुरु के सामने शो मत करो आप, बनावटी पना नहीं। यहां मायाचारी करने का फल मालूम है क्या, वहां दुनियादारी में तो मायाचारी करते ही हो, यहां आकर के ऐसे शरीफ बनते हो, यहां पर हिपोक्रेट्स बनने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्य मत के जो ढोंगी बाबा है उनकी बात तो छोड़ो आप, यहां के ढोंगी बाबाओं से मिलो, कैसे लोग हैं ढोंगी बाबा, यानी सिर्फ सन्यासी की बात नहीं है, जो अब आगे बोलने की आवश्यकता नहीं, इशारा का पर्याप्त है। क्या क्या यूज कर रहे हैं आप? अब एक दिन हमने बोला था कि भाई खून का व्यापार करने वाला जैन नहीं हो सकता, तो उस दिन किसी ने प्रेरणा से प्रेरित होकर त्याग कर दिया उस चीज का कि हम वैसी दवाइयों का व्यापार त्यागते हैं, कायोत्सर्ग करके त्याग। क्या था कि हम तब तक विश्वास नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे ऊपर क्या पता कि किसको कितना विश्वास है, भाई पंच परमेश्वरियों का स्मरण करके लो संकल्प अगर लेना हो तो। नहीं तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि भाई ठीक है मैं नहीं करूंगा ऐसा, नहीं करूंगा इसकी क्या गारंटी। हाँ अब कायोत्सर्ग करने के बाद अगर वो उस नियम को खंडित करे तो फिर उसकी गति उसके जिम्मे, वो जाने। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि कायोत्सर्ग बड़ी भारी चीज है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, 5 परमेष्ठियों को 9 बार नमस्कार कर रहे हैं। 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है दुनिया में, कितना भी विशाल अंक हो। 3 कम 9 करोड़ की संख्या भी देख लो आप, उसको भी अगर आप की नंबर पर ले आएंगे, यानी एक अंक में लाएंगे जोड़ जोड़ करके, तो फिर वो 9 का उल्लंघन नहीं, 444 वोल्ट का करंट होता है। जितना भी होता हो वो तो 11,000 वोल्ट के भी करंट के वो लगे रहते हैं। सबको टोटल करो आप, क्या आता है? 31 तारीख को भी किसी का जन्म हुआ तो 3 और 1 4 अंक आता है उसका, की नंबर, उसको 4 बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, इसको की नंबर बोलते हैं। और एक फॉर्च्यून नंबर होता है, भाग्यांक, और दूसरा की नंबर। तो की नंबर में कोई भी नंबर 9 से बड़ा नहीं होता, इसलिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो फिर अब जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको उपदेश दे करके प्रभाव डालना मुश्किल है, जब तक व्यक्ति अंदर से नहीं बदलता। और हम लोग ये मान करके चलते हैं, कई बार, एक बार हमसे किसी एक अच्छे सज्जन ने कहा था, मेडिकल फील्ड फार्मेकोलॉजी वाले ही थे वो, डॉक्टर थे, उनका ये कहना था कि महाराज जी आप कितने भी प्रवचन करो जनता टस से मस नहीं होने वाली, जिसको सुधरना है वही सुधरता है। बोले महाराज आप बोलते हैं बस, सुनते हैं लोग, और सुन करके उसका थोड़ा सा उनके मन में शांति मिलती है, बाकी करते वही है जिसको जो करना है वो, आपके अनुसार कोई कुछ नहीं करता। और विद्यानंद महाराज जी ने कहा कि इसीलिए सच तो ये है कि कोई किसी का गुरु नहीं है, सब अपने गुरु हैं। यानी जब तक वो अंदर का गुरु नहीं कहता कि त्याग कर, तब तक कोई बाहर का गुरु त्याग नहीं करा सकता। जैसे उदाहरण के लिए वो पूजाओं की चर्चा अपनी कितनी बार हो चुकी है, लेकिन अभी भी मंदिरों से वही आवाज आती भगवान के अभिनय पूर्ण शब्दों की। भगवान के सामने बड़े ठाट से लोग बोलते हैं, ऐसे अपने मसल्स दिखाते हैं, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सामने अगर कोई जाकर के कहे, जिसके बाइसेप्स 22 इंच है, उसके सामने अगर कोई कहे कि देखो मेरे कितने मसल्स हैं, तो वो हंसी का पात्र है कि नहीं। इसी प्रकार आप तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान के सामने कहते हैं उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, मतलब इतनी भी शर्म नहीं आती आपको कि 3 लोक के नाथ के सामने आप अपनी बड़प्पन वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात हम 50 बार कहें तो भी कोई असर नहीं होने वाला, जब तक आपके अंदर का गुरु बोले कि अब छोड़ दे, तभी छोड़ सकते हैं आप। उसके पहले हमारी ताकत नहीं है छुड़ा दें हम आपको। और सुधा सागर जी की स्टाइल ऐसी है कि वो आपके अंदर के गुरु को इंजेक्शन लगा देते कि बोल, तो वो अंदर का गुरु बोल ही देता है। तो वो अगर किसी के पीछे पड़ते हैं तो फिर वो उनकी स्टाइल अलग है। बाकी हमारा विचार तो ये रहता है कि हम सामने वाले को सोचने देते हैं कि भाई तुम सोचो, क्योंकि तुम सोच कर करोगे तो फिर वो स्थायी रहेगा निर्णय, और बिना सोचे करोगे तो थोड़े दिन बाद बेईमानी आएगी। कभी भी दबाव में अगर निर्णय लिया जाता है तो वो बेईमानी पैदा करता ही है। दबाव में किया गया त्याग व्यक्ति को आगे चल करके बेईमान बना देता है। थोड़े दिनों बाद उसका मन ललचाएगा, वापस विषयों की तरफ जाएगा, उसको लगेगा कि अरे ये चीज, चलो मन उधर भटकेगा उसका, निश्चित है। और त्याग अगर अंदर से कर दे तो वो तो गया काम से, छूट गया वो, अब कोई रिश्ता नहीं रहा, ये स्थिति होती। तो ये संलेखना की जो प्रक्रिया है, इसमें काय संलेखना का बड़ा महत्व है। काय संलेखना के माध्यम से शरीर के जहर निकल जाते हैं, और जब शरीर जब तक जहरीला होता है तब तक उसका असर मन पर पड़े बिना रह नहीं सकता। जितना जहरीला शरीर होगा उतना ही अशांत मन होगा। ये बिल्कुल आप लगा लेना, त्रैराशिक कर लेना, रेशियो बना लेना इसका। जितना अधिक जहरीला शरीर उतना ही अशांत मन होगा। फिर आप जैसे जैसे जहर को दूर करेंगे, जहर को दूर करने के लिए आपके पास अंदर की कोई प्रक्रिया नहीं है दूसरी। प्रतिक्रमण पड़ने से शरीर का जहर नहीं मिटने वाला, दूर नहीं होने वाला, या फिर नमोकार मंत्र की माला फेरने से वो जो अंदर कोई केमिकल भरा हुआ है अपने शरीर में वो कहाँ से निकलेगा? उसको निकालने के लिए ही जिनेंद्र भगवान ने बताया कि उपवास कर, छुटकारा नहीं है, तेरे को भूख लगती है मेरे को पता है, लेकिन कोई चारा नहीं उसके सिवा, वो जहर निकल नहीं सकता, इसलिए वही पद्धति है। आप देखिए लैक्सेटिव पर्जेटिव वगैरह ले लेकर के सिर्फ ये भोजन नली को साफ कर सकते हैं, और साफी वगैरह जो ब्लड प्यूरिफायर्स हैं उनको लेकर के आप रक्त का कुछ शोधन कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे केमिकल्स हैं कि जो इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं अपने शरीर के टिश्यूज में, उनको कहां से निकालोगे? कोई चारा नहीं है, काय संलेखना के सिवाय बाह्य तप के बिना कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बाह्य तप का जैन साधना में अत्यंत महत्व है। अब समझ में आ गया ना? नहीं तो फिर ये तो बात स्पष्ट थी कि भाई आध्यात्मिक साधना करना कषायों को जीतना है, अब उपवास करने में क्या रखा है? कषायों को जीतना है तो फिर मन को शांत रखो, है ना, यही पद्धति है। लेकिन ऐसा नहीं है, मन का और शरीर का, तन मन का इतना निरपेक्ष भाव नहीं होता कि तन कुछ भी करता रहे और मन कुछ भी करता रहे, ऐसा नहीं चलता। दोनों का संबंध है, बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और एक अलग बात है, मतलब कि ऐसे दूर से देख लिया, उसकी रहस्य और उसकी गहराइयों को अपन नहीं जान रहे तो भी ठीक है, मतलब वो कम से कम स्मृति में ला करके आज आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा था वहां। और आखिरी में जो शरीर के भीतर भीतर जो जमा हुआ मल होता है वो भी छूटने लगता है, और उसके बाद जब पूरा निर्मल हो जाता है शरीर, तब उसका चेहरा देखने लायक होता है। एक घटना हमारा, मतलब मन ललचा रहा है कि हम आपको बता दें, पर जो लोग आज नहीं है वो बेचारे वंचित रह जाएंगे, आप बता देना, ठीक है। बड़ी सुंदर घटना है, सन 87 की बात है। आचार्य श्री बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, थुगोंजी में चातुर्मास चल रहा था, और उस समय जयपुर से एक वैद्य आए थे, सुशील कुमार जी, और लगभग उसी वर्ष अपने एक बहुत बड़े आचार्य आचार्य धर्म सागर महाराज जी, जिनको भोले बाबा भी कहते थे लोग, उनकी संलेखना हुई थी। और संलेखना होने के पहले लोगों की ये धारणा थी कि इतना हैवी शरीर, भारी शरीर उनका, कि वो चलते हैं तो थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं, और फिर कोई ज़्यादा अध्ययन भी नहीं उनका, पढ़ने लिखने में भी उतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं उनके पास, सामान्य रूप से चर्चा करते हैं और फिर बिल्कुल मारवाड़ी और साधारण भाषा बोलते हैं, अब ये क्या संलेखना करेंगे? और इनको आचार्य पद मिल गया है, ये ले तो रहे नहीं थे लेकिन फिर भी बस आचार्य बन गए हैं। कई लोग जो है अलग अलग प्रकार के दिमाग है इंसान के, तो खुरापाती दिमागों में ये सब विचार चल रहे थे उस जमाने में, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि नहीं ये बहुत अच्छे साधु हैं, और ठीक है जैसे भी हैं, सरल है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। ज्ञान सागर महाराज जी का भी आदर करते थे वो, ज्ञान सागर महाराज जी से धर्म सागर महाराज श्री की एक बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने साथ में बैठा लिया था अपने, एक साथ में, मतलब एक ऊंचाई बराबरी पर, विद्यासागर महाराज जी नीचे बैठे थे उस समय, मुनि थे, तो उनके अंदर बहुत ही सरलता थी। उस समय ये चर्चा थी कि इनको कोई ऐसा गहराई में की पकड़ तो है नहीं शास्त्रों की, लेकिन कैसे भगवान जाने संलेखना कैसे करेंगे, इतना भारी शरीर है, भारी शरीर बहुत बाधक होता है साधना संलेखना में। पर ताज्जुब की बात यह है, जैसा हम कई बार कह चुके हैं, कि जिसने जीवन में कभी छल नहीं किया है उसको मौत नहीं छल सकती। तो इतना निश्चल जिनका सरल जीवन था, उनका अंतिम समय परीक्षा फल था। उस परीक्षा फल को देख सकते हैं कि उन विद्यार्थी ने क्या किया है जीवन भर। और संलेखना बिगड़ जाती है कई लोगों की, अलग अलग प्रकार के स्थितियां बन जाती है। तो जब धर्मसागर आचार्य महाराज का समय निकट आ गया, तब उन्होंने संलेखना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, और प्रारंभ क्या कि एक महीने में उन्होंने जो साधना की है उपवास आदि कर करके, सुशील कुमार जी के पुत्र ने उनके फोटोग्राफ्स लिए हैं और वो फोटोग्राफ्स वो आचार्य श्री को दिखला रहे थे, और किसी पुण्य योग से सौभाग्य से उस समय आचार्य श्री वहाँ विराजमान थे और हम उनके चरणों के निकट बैठे हुए थे और वो फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे। और उन फोटोग्राफ्स में उन्होंने बताया कि ये इतने दिन पहले का फोटो है, ये इतने दिन पहले का फोटो है, ये इतने दिन पहले का। आखिरी के फोटोज देखे तो एकदम नॉर्मल हो गया शरीर, जो एक्स्ट्रा वेट था, बहुत वजन था उनका शरीर, भारी था, तो वो सारा वजन गायब हो गया है। और उसके बाद फिर संलेखना का समय जब निकट आ रहा है तो फिर उन्होंने और भी फोटोग्राफ्स लिए हैं, जैसे कभी कोई बहुत बड़ी सर्जरी होती है, मेडिकल सर्जरी, तो उस समय क्या करते हैं कि वो पूरी रील निकालते हैं। वो कभी कभी हार्ट सर्जरी के 72 फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं क्रम से, ताकि आगे आने वाले विद्यार्थियों को सिखाया जा सके कि देखो ये एक स्टेज होती है, फिर उसके बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वैसे क्रम से उनने फोटोग्राफ्स निकाले धर्मसागर महाराज श्री के, और उन फोटोग्राफ्स में फिर एक ऐसा कोरा कुछ भी नहीं आया था। उसमें क्या था कि एक फोटोग्राफ ऐसे निकाला पूरा, तो उसमें एक शाइनिंग थी बॉडी में, महाराज श्री एकदम शांत बैठे हुए थे। फिर जब एकदम अंतिम समय निकट आ गया तब फोटोग्राफ्स निकालने लगे वो, तो उस समय एक फोटो लिया तो यहाँ नाभि से नीचे, इसको जापानीज लोग हारा बोलते हैं, टैंटेन बोलते हैं चाइनीज लोग, कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी का केंद्र होता है अपने शरीर में, नाभि के नीचे, बस इतना करीब 3 अंगुल नीचे होगा वो स्थान, वहां पर एक तेज था। वो फोटोग्राफ आज भी हमें याद आते हैं, जो आचार्य श्री को दिखा रहे थे, वहां पर एक तेज था। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने फोटोग्राफ निकाला, एंगल बदले बिना, ये सबसे बड़ी खूबी की बात ये है, नहीं तो फिर कोई कहे कि भाई एंगल बदल गया होगा, क्योंकि ज्यादा साइंटिस्ट लोग हैं ना आजकल। एंगल बदले बिना जब उन्होंने दूसरा फोटो निकाला तो फिर यहां पर नाभि के आसपास पूरी वो शाइनिंग आ गई थी। फिर तीसरा फोटो निकाला तो यहां आ गई थी शाइनिंग। कहने का मतलब यह है कि वो शाइनिंग धीरे धीरे ऊपर उठती चली जा रही थी। और उसके बाद अगला फोटो जब निकाला तो यहां छाती पर वो शाइनिंग थी, उसके बाद गले में वो चमक थी, फिर चेहरे में वो चमक थी, और उसके बाद जब यहां का फोटो, उनने सोचा था कि अब इसके अगले फोटो में आखिरी समय आ गया है, जब प्राण विसर्जित हो रहे थे तब उन्होंने फोटोग्राफ निकाला, ब्लैंक आ गया वो फोटोग्राफ। मतलब कैमरा के पास वो ताकत नहीं थी कि उस समय के तेज को वो अपने में समेट सके। बहुत ऊंची चीज है संलेखना, और जब तक अपने अंदर हृदय से उसके प्रति बहुमान न हो, और अंदर माने क्या बताएं हम आपको, कि अपने अंतरंग की गहराइयों में जब तक संलेखना की भावना न हो, तब तक ये संलेखना कोई खिलौना नहीं है कि बच्चे को खरीद करके दे दिया जाए, महान दुर्लभ है। और एकम में भवक गहने समाहि मरणेन जो मुदो जीवो, भगवती आराधना और अन्य ग्रंथों में ऐसा एक उल्लेख मिलता है कि एक मनुष्य पर्याय में अगर कोई संलेखना पूर्वक अपने प्राण छोड़ दे, तो संलेखना पूर्वक प्राण छोड़ने वाला अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका सम्यक दर्शन मोक्ष तक के छूटेगा नहीं, वो 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अधिक से अधिक। उक्कसेन सतट्ठ भवक गहनाणी जहन्नेन दो तिंडी भवक गहनाणी, अधिक से अधिक 7-8 जन्म होते हैं उसके, और कम से कम 2-3 भाव में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और अगर उसी जन्म में केवल ज्ञान हो जाए तब तो बात ही निराली है। एक महामुनि को बहुत प्यास लगी संलेखना के समय, इतनी प्यास लगी कि वो सहन नहीं कर सके, तब फिर गुरु महाराज जानते थे निर्यापक आचार्य कि इनका उपवास है और प्यास इनको सहन नहीं हो रही है, तो फिर उनने कहा कि ठीक है आपको सहन नहीं हो रही है, तो फिर आज मेरी तरफ से अनुमति है, बाद में प्रायश्चित कर लेना, आपको इच्छा हो रही है ले लो। फिर जब लेने गए तो शरीर इतना शिथिल था कि वो अंजुली इस प्रकार बांध नहीं पा रहे थे ठीक से, तो भी उनने कोशिश तो पूरी करी, ऐसे हड्डी पसली थे, और फिर जैसे ही उसमें पानी डाला और वो ऐसे मुंह के पास तक के लाया, पानी मुंह के पास लाने के पहले ही पूरा नीचे गिर गया। तो फिर आचार्य महाराज भी वहीं पास में ही थे, और उनको दो लोगों ने ऐसे पकड़ा हुआ था बाजू से हाथ भुजाओं को, बोले कि कोई बात नहीं, आपको हम पिला देते हैं। बोले तब फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसे इशारा किया कि नहीं, ये तो मुनिचर्या तो ऐसी है कि उनको खुद अपनी अंजलि में लेना पड़ता है, कोई दूसरा कैसे दे। फिर आचार्य बोलते हैं कि आप ले तो पा नहीं रहे, फिर कैसे होगा काम, फिर प्रयास कर लो। बोले फिर प्रयास किया उनने, दो तीन बार प्रयास करने पर जब नहीं ले पाए तो पैर भी जवाब दे गए, खड़े नहीं हो पा रहे थे, बैठ गए। वो बैठ गए तो फिर आचार्य बोलते हैं कि आपको बहुत प्यास लगी, आप फिर से खड़े हो जाइए। तब फिर उनको अपने जीवन की तपस्या याद आ गई कि मैंने दीक्षा के समय ये संकल्प लिया था कि जब तक पैरों में खड़े रहने की शक्ति होगी तभी तक आहार ग्रहण करूंगा, और अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और गुरु कह रहे हैं कि पानी ले लो फिर से खड़े हो जाओ, नहीं, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। उनने मना कर दिया। फिर गुरु महाराज ने बोला कि फिर 24 घंटे और कैसे निकालेंगे। तो उनने ऐसे इशारा किया कि 24 घंटे निकालने ही नहीं पड़ेंगे, और फिर इतनी विशुद्धि में आ गए वो कि कहते हैं कि वो सर्वार्थ सिद्धि में हेमिंद्र पद को प्राप्त हो गए। यानी जहां पर केवल महामुनि का प्रवेश है वहां चले गए, और सर्वार्थ सिद्धि जाने वालों का संगनन कौन सा होगा, वज्र ऋषभ नाराज संगनन। तो जरूरी नहीं कि संगनन मजबूत हो तो सहनशीलता भी ज्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगनन अलग वस्तु है, सहनशीलता अलग वस्तु है। अब उच्चारण एक जैसा लगता है इसलिए लगता है कि संगनन ज्यादा तगड़ा हो तो फिर संगन सहन शक्ति भी ज्यादा होगी। सुकुमाल स्वामी के पास कितनी थी सहन शक्ति, कौन सा संगनन था उनका, वज्र वृषभ नाराज संगनन उनका भी था, क्योंकि वो भी वहीं गए हैं सर्वार्थ सिद्धि। फिर सहन शक्ति थी कि नहीं उनमें, नहीं थी। सहन शक्ति का संबंध अपने अंदर से है, जितना अपन कषायों को जीतते हैं उतनी ही सहन शक्ति बढ़ जाती है। और सुकुमाल स्वामी जिनको राई का दाना चुभता था, सियालनी के दांत उनको विचलित नहीं कर पा रहे हैं। इसका नाम है साधना, कि जब कषायों पर विजय प्राप्त हो जाती है तब वो सब वेदनाओं को पार कर जाते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हैं संलेखना से संबंधित। अब दोपहर के उपदेश में देखो अपन कोई घटना आएगी स्मरण में तो फिर बताएंगे। जैसे पिछली बार हमने सनत कुमार मुनिराज की घटना सुनाई थी, इस बार और कोई घटना अपन देखेंगे। तो किस प्रकार वो संलेखना धारण करने वाले साधु अपनी साधना करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के आशीर्वाद से संलेखना हो जाए, और ऐसा नहीं है कि मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए संलेखना कर लूंगा मैं अपनी ताकत से, ऐसा भी नहीं है। दोनों बातों का संबंध है, लेकिन ये नियम है कि जिसके पास आत्मबल नहीं है उसकी संलेखना सफल नहीं हो सकती। आत्मबल होना बहुत जरूरी है, और एक कॉन्फिडेंस भी साथ में जरूरी है, आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास क्या, कि जिसके अंदर ये विश्वास हो कि मेरी संलेखना सफल होगी ही होगी, उसकी संलेखना असफल नहीं हो सकती। और ऐसा विश्वास किसके अंदर हो सकता है, सिर्फ उसी के अंदर जिसने ईमानदारी से साधना की है। जो अपने प्रति ईमानदार नहीं रहा है उसके अंदर ये डर हमेशा बना रहेगा कि पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। क्योंकि वो जानता है ना कि मैंने जो कुछ किया है उसका परिणाम क्या हो सकता है। हर आदमी जानता है, कौन नहीं जानता, हर पापी जानता है कि पाप का परिणाम क्या होता है। अंदर से उसकी आत्मा उसको बेचैन करती है जिस दिन हत्यारा भी हत्या करता है रात को नींद नहीं आती, भले वो पेशेवर मर्डरर हो, किलर हो, प्रोफेशनल हो, लेकिन जिस दिन खून करता है कोई खूनी, वो सो नहीं पाता। क्यों नहीं सो पाता? एक्साइटमेंट के कारण, गिल्ट के कारण, क्या कारण है? एक्साइटमेंट तो काम के पहले होता है, गिल्ट बाद में। तो जो ग्लानी होती है, आत्मग्लानी, मतलब अंदर ही अंदर उसको कोई कहता है कि तू पापी है, तू हत्यारा है, तो वो कितनी भी हत्या कर ले, लेकिन अंदर से वो जो एक चोट लगती रहती है, वो तो प्रहार चलते ही रहते हैं अंदर से। तो इसलिए अगर अपना जीवन स्वच्छ हो जाए तो मरण नहीं बिगड़ सकता, जीवन मलिन होगा तो मरण निर्मल नहीं हो सकता। इतना सीधा सा सूत्र है। मरण को निर्मल बनाना हो तो जीवन को मलिन मत रहने दो, और जीवन मलिन है तो मरण निर्मल होगा ऐसी आशा छोड़ दो।